तन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी का ये मौका है। हमारे बीच आदरणीय मोहिनी दीदी हैं। हम बहुत दिल से और तालियों से भी दीदी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। इयर्स का सेलिब्रेशन है इस बार का, उस मौके में बनाया हुआ बैंड दीदी को पहना रहे हैं। दीदी 1955 साकार मम्मा बाबा के टाइम में ही ज्ञान में आए, और जब साकार मम्मा बाबा थे तभी दीदी सरेंडर हुए। हमारे यज्ञ के दीदी फर्स्ट इंग्लिश हैंड थे उस टाइम में, और दीदी ने बीए भी किया है, जर्नलिज्म भी किए हैं। और दीदी करेंटली प्रेसिडेंट है BKWSO के, और यूएसए के प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में। और दीदी का प्रिविलेज हमें मिला है कि दीदी अम्बेसडर के रूप में ब्रह्म कुमारीज के सेवरल हेड्स ऑफ स्टेट एंड डिप्लोमेट्स के उनको सर्व किए हुए हैं, और अभी वो रीजनल कोऑर्डिनेटर है अमेरिका एंड कैरेबियन का। दीदी बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में स्पिरिचुअल इश्यूज के बारे में हजारों लोगों को अपने वक्तव्य से उनको बहुत इंस्पायर भी करते हैं, उनको बहुत क्लैरिटी भी देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग स्पार्क मनाते हैं खास बीकेस के पुरुषार्थ के लिए, दीदी के प्रेरणा से और डायरेक्शन से हर साल इंटरनेशनल लेवल में एक टॉपिक लिया जाता है, और वेबिनार में सभी बीकेस भी जुड़ सकते हैं, और गाइडेंस दीदी और जयंती दीदी सब जुड़ते हैं, तो पुरुषार्थ के लिए टॉपिक्स भी लिए जाते हैं। अभी हम दीदी से सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी क्या स्नेह शुभ भावना से आज आप सबके सामने उपस्थित हो सके, तो आपको मालूम है कि अमेरिका और भारत में 11.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो हम लोग जब वहां से आते हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं। परसों रात को यहाँ पर आए और यहाँ से भाइयों की तरफ से जो भी निमित्त हैं निमंत्रण का ईमेल मिला था, पर मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि 11 तारीख को क्या होगा कैसे होगा। इतना जरूर कहूंगी कि आप औरों पर अपने पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर आप लोगों ने मेरे पर भी एक्सपेरिमेंट किया है लगता है। वो भी बहन को मैंने बोला शाम को कि कैसे पहुंचेंगे। वो भी बहन ने कहा नहीं कुछ भी हो जाए हमको जाना ही है। मैंने कहा लेट हो जाएगा, बोला कोई बात नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हुए। देखो आप सबकी एक ही शुभ भावना है और जरूर वो शुभ भावना यही है कि हम स्व परिवर्तन और स्व उन्नति के आधार से विश्व की सेवा करें। यही भावना है, कुछ और भी है या यही भावना है ना? स्व परिवर्तन स्व उन्नति, सिर्फ हमको समर्थ नहीं बनना, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होना, लेकिन आगे असेंड करना है, चढ़ती कला उड़ती कला वो भी जरूरी है ना। तो स्व परिवर्तन और स्व उन्नति और विश्व की सेवा, क्योंकि आज भी बाबा ने कहा वरदान में कि स्व उन्नति के आधार से विश्व परिवर्तन। कल भी इसी तरह का कुछ था, कई दिन से बाबा स्व उन्नति के बारे में स्व परिवर्तन के बारे में कह रहे हैं। फिर ये भी सबका लक्ष्य है कि बाबा हम सभी को कहते हैं कि आप लोग आधार मुहूर्त हो और साक्षात्कार मुहूर्त भी बनना है, तो आधार मुहूर्त बनने के लिए और साक्षात्कार मुहूर्त के लिए तो किसका साक्षात्कार हो, तो आप लोग एक ही उत्तर दें किसका साक्षात्कार कराना है, बाबा का ना। परंतु बाबा ने जो इस बार कहा कि 5 ड्रिल का अभ्यास, तो हमने जनवरी जब मार्च शुरू हुआ तो ये वाला जो गीत चला है आप सबको तो मालूम ही होगा, ये नहीं सुना है पहले? अच्छा, तो मैंने जब ये सुना जनवरी या दिसंबर में सुना था, तब से हम लोग दिन में 3 बार 5 स्वरूप का अभ्यास ये गीत चला के करते थे। फिर जब बाबा ने कहा ये करो तो और पक्का हो गया कि साक्षात्कार हर एक आत्मा को भिन्न भिन्न तरह का चाहिएगा, और अगर मेरे को निमित्त बनना है तो जितना ये 5 स्वरूपों का अभ्यास होगा तो किसी को हमारे अनादि स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, नहीं आत्मा अनादि अविनाशी शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप है, तो वो भी एक कोई सामने आए और उसको वो अनुभव हो, उसको अनुभव हो कि मैं क्या हूं, उसको अपने अनादि स्वरूप का अनुभव हो, रियलाइजेशन हो, अनुभव हो, या एक अवेकनिंग जागृति हो, तो ये पहला स्वरूप। फिर देवता स्वरूप, कई देवताओं के भगत होंगे, तो वो यही सोचते हैं कि हमको देवता का साक्षात्कार हो, दिव्य रूप का साक्षात्कार हो। तो अगर हमारा अभ्यास किया हुआ है और हमारे अंदर उस स्थिति और उस अनुभव की मूर्ति तैयार है, मूर्ति तैयार होगी तो साक्षात्कार होगा ना। फिर तीसरा पूजनीय रूप बाबा कहते हैं कि भावना, हम लोगों को देखिए ऐसी भावना उनके मन में उत्पन्न हो कि हमारी ये पूजनीय, हमारी ये पूर्वज आत्मा हमारे सामने है, वो मूर्ति है। सर्वोत्तम जीवन ब्राह्मण जीवन है और वर्तमान में फरिश्ता बनना है, इस तरह का साक्षात्कार या प्रेरणा कहें, संकल्प कहें, उनके अंदर आए। तो जब बाबा कहते हैं साक्षात्कार स्वरूप बनो, तो बाबा लाइट है, वो साक्षात्कार तो होना ही चाहिए, परंतु अगर हम निमित्त हैं तो हमारे भी किसी एक रूप का उनके अंदर उनको अनुभव हो या उनके अंदर खुद संकल्प आए कि मेरी भी ऐसी स्थिति हो, मैं भी ऐसा बनूं। समझते हैं क्यों जरूरी है अभ्यास, क्योंकि अभ्यास से आपकी मूर्ति तैयार हो रही है अंदर। तो बाबा ने जब से कहा है हम और ज्यादा ये चलाने लगे हैं और बहुत अच्छा अनुभव सबको होता है। तो इसलिए सबसे पहले जब हम बाबा के पास आते हैं या किसी को भी, हम कहते हैं कि ज्ञान सुनाना है, आज बाबा ने का परिचय देना है, परंतु ज्ञान को हम लोग और सिंपल करके कहते हैं कि पहले हर बात की समझ हो, रचता की रचना की, ज्ञान को हम कहते हैं भाई समझ हो। तो समझ आती है, लोग कोर्स करते हैं, उनको अच्छा लगता है, परंतु समझदार सब नहीं बनते, राइट। आजकल बहुत बहुत बड़ा सूक्ष्म ईगो मनुष्य में यही होता है कि आई नो आई नो आई नो, कोई भी बात शुरू बोलो आई ऑल्सो नो, मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, मैंने भी सुना है, पर ये इंटेलेक्चुअल ब्लॉक हो जाता है कि मुझे तो पता है नो। और सबसे बड़ा डिसीविंग फैक्टर, धोखा देने वाला ये आई नो जो है ना, वो हमको कई बातों से वंचित रखता है। आई नो, मुझे और जानने की क्या जरूरत है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब मालूम है। ये बड़ा सूक्ष्म ईगो क्रिएट हो जाता है दोनों तरह से, जो ज्ञान में नहीं है और ज्ञान में है उनका भी वहां पर थोड़ी ब्लॉकेज बन जाती है। आई नो, मुरली पढ़ते हैं, ये तो मैंने पहले भी सुना है, ये तो बाबा ने कई बार बोला है, ये ईगो बोल रहा है ना मनुष्य का, ब्राह्मणों का कहो। आज मैं कम से कम 3 बार तो मुरली पढ़नी पड़ती है मुझे, ये नहीं कि पढ़नी है, आई फील द नीड कि अभी कुछ इतना जितना पल्ले पढ़ना चाहिए था, जितनी गहराई में जाना चाहिए था, जितना मुझे एब्जॉर्व करना था धारण, वो हुई नहीं ग्रहण, एक बार फिर सुन लो। कल हमने रात को 8 बार ब्लेसिंग पढ़ी, आपस में बैठे थे थोड़े लोग, क्योंकि इतनी गहरा वरदान था बाबा का, एक एक शब्द। कर्मो फिलोसफी में भी बैलेंस 3 बातों का बाबा ने बताया। तो कहने का भाव ये है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इस जीवन में महत्वपूर्ण कहो, खजाना कहो, सोर्स कहो, वो है बाबा की मुरली, बाबा की साकार मुरली। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई कहता है कि हमको तो अव्यक्त मुरली बहुत अच्छी लगती है, इतने तक कई कहते हैं कि अभी तो अव्यक्त ही मुरली पढ़नी चाहिए। जब भी सुनो कहते हैं हमने अव्यक्त वाणी की किताब में ये पढ़ा, परंतु रियली एक एक शब्द अगर मैं चाहती हूँ कि न केवल सुनने तक समझने तक, पर फिर उसका मैंने पहले तो मनन चिंतन चाहिए। मुझे याद है जब स्पार्क शुरू हुआ 25 साल पहले, तो रमेश भाई ने मुझे बोला कि आप पता नहीं कोर टीम क्या भी बना रहे थे, बोला आपको हम निमंत्रण देते हैं। तो मैंने उस समय, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट वर्ड को विश्वास भी करती हूँ, पर जरूरी नहीं मानती कि ज्ञान का एक्सपेरिमेंट जरूरी भी है, या उसको सिद्ध करने के लिए हमको विज्ञान का यूज करें ये करें। मैंने कहा जिसका समय आता है, कोई साइंटिस्ट है कोई है, एक मिनट में उसको विश्वास हो जाता है, और जिसका नहीं आता है आप ऐसे घुमा के बताओ, ऐसे बताओ, कहानी सुनाओ, रेफरेंस सुनाओ, शास्त्रों की बात सुनाओ, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, लेकिन कई बार वो सत्य थोड़ा सा तथ्यों में मिक्स हो जाता है, हम फैक्चुअल बातें करते हैं। अभी हम और आपको 5000 वर्ष का चक्र है, कितनी पॉइंट्स मिली थी 60 वर्ष पहले जब मैं ज्ञान में आई, तो हमारी दादी ये एक दिन में बता देती थी, आत्मा हो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा बाप है, ये वर्षा है, ये चक्कर फिरता है, तुम 5000 पहले आई थी, ऐसे बैठी थी, ऐसे दादी बोलती थी, अभी तुम फिर बैठी हो, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक लग रहा है। 7 दिन का कोर्स 7 मिनट में, फिर आगे क्या करना है, बाबस साकर बाबस ऐसे ही मुरली सुनो रोज, 7 मिनट का कोर्स हो गया और मुरली सुनो। तो कहने का भाव, तो मैंने उनको रमेश भाई को कहा, उस समय मेरे पास बहुत डिपार्टमेंट सी थी, आईटी थी, पब्लिशिंग का था, फिल्म्स का था, तो मैंने बोला कि संभव नहीं है मेरे पास, मैं इतना नहीं अपनी बुद्धि को, तो मैंने कह दिया। फिर जब मेरे पास इस बार निमंत्रण आया, तो मुझे रमेश भाई की भी याद आई, और उनका भी हुआ भी था ना स्मृति दिवस, नहीं बीच कब था, अभी बहुत अच्छी छोटी फिल्म भी बनी थी उस पर, तो मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, रमेश भाई बहुत खुश होंगे जहां भी होंगे। तो कहने का भाव ये कि पहले समझ, और समझ को साकार मुरली जब सुन रहे हैं, तो जैसे ऐसा पहले तो एक धारणा होती है, एक ग्रहण करना होता है, इंग्लिश में ग्रहण को कहते हैं द पावर टू एब्जॉर्ब, कि मैंने रियली कितना उसको समाया, कितना मेरे बुद्धि में प्रॉपर वे में वो अंडरस्टैंडिंग आई, ग्रहण की, बुद्धि ग्रहण करती है ना तो फिर धारणा भी सहज हो जाती है, अगर बुद्धि ग्रहण नहीं करती है, आई हैव बीन एब्सॉर्ब्ड, उसको जब हम इंग्लिश में फिर इम्प्लीमेंट धारणा करना है उसकी, तो वो धारणा भी इतनी नहीं होगी। तो हर बार जब मुरली सुनते हैं ना, तो आज इस समय मेरी बुद्धि, मेरी स्थिति और कल में फर्क है ना, सवेरे और शाम में फर्क है, तो जिस समय मैं मुरली पढ़ती हूँ, उस समय मेरी स्थिति के अनुसार मुझे उस मुरली की अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है, गहरी होती है, सटल होती है, सूक्ष्म होती है, दिव्य होती है, अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल हर बार बढ़ता है। तो इतना अटेंशन से, ध्यान से, प्रेम से, निश्चय से और भावना से मुरली सुननी और पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जीवन का आधार है, और हमारा हर रेफरेंस, हर श्रीमत, हर डायरेक्शन, उसका आधार क्या है, बोलो। तो कितना मुरली से हमें प्यार होना चाहिए। तो जिसमें मैंने कहा कि जब मुरली साकार पढ़ते हैं, सुनते हैं, पहले तो देखो कोई जमाना होता था, हमारे पास 7 दिन के बाद मुरली पहुंचती थी पोस्ट से। अभी हम मुरली का दिन भी नहीं है तो पहले ही आ जाती मुरली। कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी के आधार से, सोशल मीडिया से कितनी मुरली अवेलेबल है। पहले तो कोई कहता था मुझे मिलती नहीं है, मैं अभी तो रेडी नहीं हूँ, अभी तो स्विच ऑन करो और मुरली पढ़ो, राइट। तो एक होता है, देखो बुद्धि भी एक होती है, होशियार बुद्धि एक होती है, सूक्ष्म बुद्धि। इंटेलेक्चुअल्स दुनिया में बहुत है, हर तरह के, आईटी में है, साइंटिस्ट है, फिल्म, जो जिस फील्ड में है इंटेलेक्चुअल बहुत है, लेकिन सेंसिबल बहुत थोड़े हैं। जब आप सारी लाइफ अपने टेलीफोन और इंटरनेट और अपने मतलब उसी से ही सारे दिन हमारी बातचीत किससे होती रहती है, मैं तो हो गया कि है 10 मिनट बैठेंगे। तो वो समझ को हम जितना जितना धारण करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जो मैंने कहा ना कि एक बुद्धि ग्रहण करती है फिर धारणा होती है जीवन में, तो विचार सागर मंथन करते हैं, अभ्यास करते हैं, जो जो स्थितियों का बाबा बताते हैं, फिर अभ्यास करते करते वो स्थिति बनती है, अर्थात स्वरूप बनता जाता है। हमारे स्वरूप से और स्मृति की सामर्थ्य, इन दो बातों पर मेरा बहुत अटेंशन है। मैं होशियार हूँ, मेरे में ये है वो सामर्थ्य, उसको स्किल्स बोलते हैं, भाई इसमें ये टैलेंट है, ये विशेषता है। परंतु हमको विशेषता वो सब आजकल तो जो जिस बात में होशियार है उस बात में फेमस हो ही जाता है और यज्ञ की सेवा भी उसको मिलती है। लेकिन एक होता है कि दिव्य बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, बाबा कहता था दूरंदेशी बुद्धि है। तो अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अपने जो क्वालिटी कहो, हर एक चीज की क्वालिटी पुरुषार्थ की समझ की हमको नंबर वन रखनी है। अगर नंबर वन में जाना है तो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी होती है ना भाई, ये कोई भी चीज देखती है अच्छी क्वालिटी की है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, ये थोड़ा मीडियम क्वालिटी है, तो पुरुषार्थ की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्तमान समय पर करीब 2-3 महीने से, मैं अक्टूबर में जब आई थी मधुबन तो बाबा की मुरली चली थी उस समय पर, जिसमें एक बात मुझे इतनी सिर्फ टच नहीं हुई लेकिन ऐसा लगा कि हम सबको यही करना चाहिए। अभी देखो हम लोग एयरपोर्ट पर आते हैं, इधर सब हमको जानते हैं, इंडिया में एयर इंडिया वाले पायलट सब जानते हैं, क्योंकि इतने साल से मैं तो सिर्फ एयर इंडिया में ही आती हूँ। तो हमेशा बोलेंगे कि दो बातें लोग बोलते हैं, बैठे होते हैं एयरपोर्ट पे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आके बोलेंगे प्लीज कोई दो शब्द सुना दो विजडम के, ये नहीं कहते ज्ञान के, राइट, फिर या फिर बोलेंगे ब्लेसिंग दो, और कुछ नहीं कहते, ये नहीं कहते ज्ञान दो या कुछ भी। तो मैं पिछली बार आई तो बहुत इस पर कि कौन से दो शब्द बोलें, जो बाबा कहते हैं ना कि विजडम, मतलब वो लोग चाहते हैं। दूसरा वरदान दो, तो हम लोग तो अभी क्या, बाबा वरदान देते हैं ना, तो हम लोगों ने वो छोटे ब्लेसिंग कार्ड बहुत सारे रखते हैं, पिछली बार तो इतने खत्म हो गए, इस बार हमने कहा और डाल दो, थोड़े टोली भी डाल दो, टोली और ब्लेसिंग कार्ड, बोलो ये ब्लेसिंग पढ़ो, ये आपका क्या आया। पर बाबा ने उस मुरली में बोला, पवित्र वृत्ति जिसकी है वो वरदान दे सकता है, और वो बात मेरे को इतनी लगी कि वृत्ति अगर पवित्र है तो आपके संकल्प, आपकी वाणी, सब कुछ आपका वरदानी हो जाएगा। अपने प्रति कहो, दूसरों के प्रति कहो। तो जब वर्क करना शुरू किया अपने ऊपर कि पवित्र वृत्ति बाबा कहता है, तो मैंने काफी उस पर कि जब वृत्ति का बहुत कनेक्शन है हमारी स्मृतियों से। देखो मुझे ऐसा याद आया कि आप में से किसी ने किसी समय पर मेरे को अचानक आके बहुत मदद दी, या अचानक मेरे को ये बात कही, स्मृति आई, तो मैं जब आपको देखती हूँ, ये तो बहुत ही आत्मा जो है बड़े दिल की है, ये आत्मा तो बहुत ही क्षमा भाव वाली है, तो मेरी वृत्ति से कनेक्ट हो जाता है। तो पवित्र वृत्ति बनाने के लिए स्मृति, चाहे वो स्मृति बाबा की है और चाहे वो स्मृति किसी की भी, किसी घटना की है, किसी परिस्थिति की है, वैसी वृत्ति उस पर अफेक्ट आता है। आप एग्री करते हैं? कोई सिर हिलाए, कुछ तो ठीक है ना। तो अटेंशन हमने जब वृत्ति पर देनी शुरू की तो उसकी स्मृतियों से कनेक्शन। एक बार मुझे याद है, जैसे हम सभी ने बनाई होगी बचपन में, हम लोग अपने लिए कुछ मान्यताएं या कुछ प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, और मेरा एक ये प्रिंसिपल है, मुझे दुख पसंद नहीं है, शायद किसी को भी पसंद नहीं है, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं दुख की कोई भी बात होगी ना, घटना भी देखती हूँ तो उसको माइनस कर देती हूँ अंदर ही, मैं लेती ही नहीं अपने कंप्यूटर में, क्योंकि अगर मैंने ली तो याद आएगी, फिर वर्णन करेंगे, फिर बैठेंगे, वार्तालाप होगा, तो फिर दुख तो अभी जैसे बाबा कहता है ना कि दूसरे ने तो एक बार बात कही, आपने 100 बार सोची, तो उसने एक बार दुख दिया, आपने अपने को 100 बार दिया, क्योंकि आप वो बात, मेरे को उसने ये कहा, मेरे को उसने ये कहा, कहने वाले को एक दिन मैंने पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों कहा, उसको बहुत दुख हुआ, बोला अच्छा मैंने बोला क्या, कहता रियली मैंने बोला, मैंने कहा कैसा हमने सुना है, मैंने ये नहीं कहा कुछ भी, मैंने कहा सुनने में तो ऐसा है कि आपने बोला है, रियली मैंने बोला, और दुख करने वाला उस बात को, बोलने वाला भूल गया, जिसको झूठ बोलने की आदत है वो बोलता रहता है और हम लोग उसका दुख लेते रहे। तो मैंने मन में ये करने के कारण क्या हुआ, मैंने कई बातें लाइफ में डिफिकल्ट है या कभी किसी, देखो मैं तो इतना फॉर्चुनेट मानती हूँ कि अभी तक भी you know, मेरी सबसे मित्रता है, सबसे शुभ भावना मिलती रहती है, कोई 1% आधा % ऐसी आत्माएं होंगी जिनको कभी किसी कारण से you know, कई बार हम लोगों को यज्ञ की मर्यादाएं कहो, देश के कानून कहो, उस आधार से कार्य चलाना पड़ता है, तो स्नेह तो सबसे है, लेकिन कई बार भी ये राइट बात नहीं है यज्ञ की नियमों और मर्यादा अनुसार, कभी कोई कोई छोटी मोटी बात ऐसी कर लेते हैं जो देश के कानून के विरुद्ध है, चाहे धन है चाहे कोई भी बात है, और हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम बाबा हमेशा हमको कहता था, दादी प्रकाशमणि, इसी को सच्चाई कहते हैं, चाहे हम यज्ञ के नियम मर्यादाएं हमको 100% न केवल अपनी जीवन के लिए, लेकिन हमें यज्ञ के कारोबार में ये हमको पूरी तरह से चलानी है। और दूसरा मैं सबको बोलती हूँ, कभी भी धन भगवान का है, भंडारी भगवान की है, हमें कोई हक नहीं है कि हम इस बात के अंदर अपनी कोई भी ऐसी मन मत चला लें। तो उस कारण कई आत्माएं, मोहिनी बहन थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उनके स्ट्रिक्ट की बात नहीं है, तो यज्ञ है हमें, ब्रह्मा बाबा ने, सब कहते हैं हमें बाप समान बनना है, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि बाबा ने कैसे यज्ञ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देता था बाबा, बच्चे दिल्ली के एयरपोर्ट पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, तो हम और ब्रिजमन भाई भी 40,000 रूपए हर महीने का किराया, बाबा बड़े डरते डरते, बाबा पैसा कहाँ से आएगा, मैंने तुमको कहा था क्या ये कि तुम ये सोचो, तो हम कुछ जवाब नहीं ना, अभी सोचना तो हमें है क्योंकि बिल तो हमें बढ़ना है। हाँ, मुझे अभी भी याद है, मैं बेंगलोर अंबिका बहन के पास गई, बहुत बड़ा मेला था, तो कई कहानी है, कैसे ऑफर आ जाते थे, हमारा ये खाली है बोर्ड, आप इस पर आपके मेले की एडवर्टाइज, इनके पास इतनी नहीं थी, रोज ऑफर आती रही, किसका कार्य है, कौन कराने वाला है, हम तो नियमित है ना। तो कहने का भाव कि बाबा ने कभी भी यज्ञ को इतना हमको, जो दादी जानकी का है ना स्लोगन, सच्चाई सफाई और सादगी, वो नियम हमको नहीं भूलना चाहिए, तो कई एक दो आत्माएं संतुष्टि रहती है, तो सबकी दुआएं तो मिलती रहती है, उसकी कोई वो बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब कि हम अपनी रिकॉर्डिंग में वो नहीं रखो। देखो संस्कार आपका रिकॉर्डिंग है, और एक बार जो चीज अंदर चली जाती है ना, को निकालने में बहुत मेहनत लगती है, पहले ही करो मुझे नहीं सुननी ना बोलनी है, ठीक है सुनी, देखो कई बार कल भी किसी का फोन आया, बहुत कुछ सुना रहे थे, सुनना तो पड़ता है क्योंकि चलो उसके अंदर कोई बोझ है, हल चाहता है, हल्का होना चाहता है, सुन ली, पर सुन के उसको अपनी इम्प्रेशन ले लेना। हम जब छोटे थे तो भी हमारे घर में किसी के बारे में कोई इम्प्रेशन मत रखो, दादी जानकी भी कहती है, तुम कहती हो कल ऐसे, उसने क्या पता आज उसका मन बदल गया हो, क्या पता वो व्यक्ति बदल गया हो आपको कहने के बाद, तो आप तो वही बात उसके बारे में बनाए रखी, ऐसा है क्या पता कहा ब्लेसिंग दो ना, हम सब कहते हैं हम तो शुभ भावना शुभ कामना, स्पार्क वाले तो सब यही करते होंगे ना हर प्रोजेक्ट में कि सकाश देना है, पर अगर स्मृति मिक्स है तो उसमें पावर तो नहीं आएगी। तो मुझे जब ये सुना तो मैंने पवित्रता को हम लोगों ने 6 महीने से लेके प्योरिटी, बाबा कहता है मैं पतित पावन, कहीं दुनिया में आत्मिक स्थिति वाली पवित्रता नहीं है जो हम बाबा के बच्चों में है। लेकिन उसमें दो बातें, पवित्रता में एक शुद्धि होती है और दूसरी श्रेष्ठता होती है, अनएडल्ट्रेटेड शुद्धि, मतलब मिलावट बिल्कुल ना हो। अभी हम लोगों में सारा चक्कर लगाया तो कभी रजो की कभी तमो की, थोड़ा थोड़ा जैसे एडल्ट्रेशन कहो मिलावट कहो, तो अटेंशन क्या देनी है कि शुद्ध संकल्प है जिसमें ना पास्ट का कोई इन्फ्लुएंस है। देखो इतनी पावर है, नहीं बाबा कई बार एग्जांपल देता था, अभी भी बाबा देता है कि आप वो एसेंस की बोतल होती है ना, आपने पता नहीं कभी लवंग का ऑयल यूज किया है, किसी ने नहीं किया होगा, करते हैं ना बाद में मुंह धोते हैं कुरला करते हैं। कभी एक भी ज्यादा बूंद डल जाए ना तो कितना तेज होता है, एक इतना भी, और लवंग आप मुंह में 2-3 डाल लो तो भी इतना तेज नहीं लगेगा, क्योंकि जो एसेंस होती है ना किसी चीज की, तो शुद्धता, हमारे हर संकल्प शुद्ध हो, पवित्र फिर एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है। पवित्रता में 5 विकार, निर्विकारी, फिर उसमें एक एक विकार, फिर उसकी वृत्ति, यू नो कोई कम काम तो नहीं है, चलो काम की वृत्ति सब विजयी है ना इसमें, तो अभी तो किसको तंग नहीं करता रहे, चलो काम की कामना है, सब अभी हम पवित्र हैं, संपूर्ण पवित्र हैं। लेकिन फिर क्रोध, अपसेट हो जाना, डिस्टर्ब होना, जोर से बोलना, उसके लिए कितनी वैरायटी है उसके, उसमें पवित्रता। फिर लोभ की, बाबा हम लोग यज्ञ का टाइम ऐसा होता था एक चप्पल रखो बाबा, फिर हम बाबा टूट जाए तो एक और रख लो, कोई भी वस्तु में ऐसा ना हो जो कल मुझे ऐसा लगे कि मेरी बुद्धि वहां गई। आजकल बहुत चल रहा है ना बुद्धि कहीं नहीं जाए, एक बाप की तरफ जाए। अब आप ये तो कोशिश करते हैं एक बाप की तरफ जाए, पर ये नहीं कोशिश करते कहां कहां से हटाऊं। मैं सबको कहती हूँ कि मैं कई बार हॉस्पिटल जाना होता है तो मेरा तो भाई देखो ये है कपड़े, ये भूमि बहन देख लो, बाकी तो सब बाबा का भंडारा है। मेरा अगर थोड़ा भी अंदर में रहेगा ना तो बुद्धि तो जाएगी, तो नेचुरल है ना। तो इसका मतलब ये कि नहीं कि भंडारा नहीं, इतने सेंटर्स चलते हैं, इतना कारोबार चलता है, धन का व्यवहार, पर बुद्धि नहीं जानी चाहिए क्योंकि मेरा नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर हम शुद्धि का देखेंगे तो फिर लोभ आता है, फिर मोह आता है, फिर सबसे मोटा भारी अहंकार आता है। दादी जानकी हंसी में कहती है कि एक कदम आगे बढ़ो तो गले लगाने के लिए अहंकार खड़ा है, कहता है तुम बहुत अच्छा किया, तुमने तो कमाल ही कर दी। तो मेरे को वो भूलता नहीं है, दादी कहती है कि तुम कदम बढ़ाते हो तो आपको कौन गले लगाने आता है, आपका अहंकार। अचीवमेंट मतलब प्राप्ति का, कहने का मतलब कि शुद्धि में तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर जिस समय पता लगे उस समय से शुरू कर दो। तो मैंने सिर्फ नहीं, फिर हमने एक ग्रुप बनाया वहां जिनको बहुत इंटरेस्ट रहती है, मोहिनी बहन हम इकट्ठे पुरुषार्थ करें, पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, बहुत समझदार होशियार लोग हैं, और उनको बहुत है कि तो हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमारी आध्यात्मिकता क्या है, ये शुद्ध वृत्ति। हमारी अपनी शक्ति सफलता क्या है, ये शुद्ध वृत्ति। तो शुभ वृत्ति जब होगी तो बाबा ने कहा उससे तुम्हें वरदान, आपको याद है ये पॉइंट, तो बाबा ने कहा उससे आप वरदान दे सकोगे। दुआएं दे सकोगे या दुआएं दे सकोगे। देखो दुआएं मांगने से बेशक एक गीत है ना, तो दे दो दुआएं माँ बाप हमारे, लेकिन दुआएं तो दिल से निकलती रहे। कई बार एक छोटे से किसी का टाइम पर सहयोग आता है, बेशक थैंक यू कहते हैं पर दुआ निकलती है। तो आज बाबा ने सच्ची सेवा, बाबा कई दिन से सच्ची सेवा कह रहे हैं, तो झूठी सेवा तो नहीं है ना, सच्ची सेवा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सेवा है प्रोजेक्ट करो, कोर्स करो, वो भी बहुत जरूरी है, वृद्धि होना जरूरी है, संदेश देना जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ अपनी स्वउन्नति परिवर्तन के आधार से जो हम सेवा कर रहे हैं, बाबा ने कहा ना स्व परिवर्तन से जो विश्व सेवा, वो सच्ची सेवा है। जैसे कि एक यज्ञ को इस समय पर हम सब की ऐसी सच्ची सेवा की शक्ति की जरूरत है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी सभी को कि आप लोग भी थोड़ा इस पवित्रता की अंदर शुद्धता और श्रेष्ठ, जिसको एलिवेटेड कहते हैं, कोई भी ऐसा संकल्प वाणी जिसमें श्रेष्ठता नहीं है, मतलब जिसको कहना नहीं चाहिए, जैसे ना अपशकुन है, भाई तुमने ऐसे टाइम पर ऐसा बोल दिया या ऐसा सोच लिया। मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर बड़े से बड़ा कार्य करना है और थोड़ा भी किसी बात में संशय आया, होगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, तो मैंने कहा कि देखो जैसे कहते हैं ना कि फल है गिर जाता है पेड़ से या चिड़िया आकर के उसमें वो कर देती है, तो बोलते हैं कि ये फल, तो बाबा को तो भोग नहीं लगेगा ना उसका। या लौकिक में भी कहते भाई खाना फल हो गया है, नहीं गिरा हुआ है जमीन पर, हमको तो पेड़ से। तो कहने का भाव कि इतना अंदर में मुझे जो कल बाबा ने मुरली में कहा, मैंने आज तक भी वही अनुभव करने की कोशिश करी हूँ कि ड्रामा चल रहा है। आज मेरा देखो ऐसा ये हुआ क्योंकि मुझे लंच के बाद जो दवा खानी थी वो भूल गई, बिल्कुल ही ख्याल नहीं आया, तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ अजीब अजीब देखा कि यही कारण था। चलो वो ड्रामा है, कितना रो धो लेंगे भाई भूल गया, नहीं होना चाहिए था, सब कहते हैं हम भी कहते हैं, पर अभी क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है। तो ड्रामा चल रहा है पर उसमें मैं, मेरा भी तो पार्ट है ना, मुझे भी तो ड्रामा प्ले करना है, या यही कहते रहना है कि ड्रामा में होगा तो होगा, मैं जा सकूंगी कि नहीं। तो ड्रामा चलते हुए में भी मेरा जो पार्ट है वो श्रेष्ठ सोचने का हो, जो कल बाबा ने कहा ना कि समर्थ स्थिति से मैं अपना एक्ट करूं या पार्ट बजाऊं। अब ये नूंद हो जाएगा, अगर मैं आपके पास आ गई अभी तो नूंद हो गया ना, तो मेरा भाग्य है ना ये तो, क्योंकि अभी आप सब की भी मुझे शुभकामनाएं मिलेंगी तो मेरे तो भंडारा भर जाएगा ना। तो कहने का भाव ये कि शुभ, मैं सबको ये कहती हूँ भाई शुभ बोलो, अच्छा मुहूर्त निकालते हैं भाई शुभ मुहूर्त हो, आज का दिन है भाई शुभ मुहूर्त हो, पर अपना सोच शुभ में जो समर्थ है तो शुद्ध भी हो पहले तो, फिर शुभ भी हो, ये पवित्रता का जो लेवल है हमारा वो हम सभी के अंदर वर्तमान समय आए, तो दुआएं मिलेंगी भी बहुत और दुआएं देंगे भी, दिल से यही निकलेगा। एक फैशन है अमेरिका में, यहाँ भी होगा, यहाँ पर कोई छींक देता है तो बोलता है सॉरी, वहां छींक देते हैं तो बोलते हैं ब्लेस यू, यहाँ सॉरी कहते हैं क्योंकि भाई हमने शोर मचा दिया छींक दे के, पर अपने हाथ में तो नहीं होती ना, तो वहां वो लोग कहते हैं ब्लेस यू। तो मैं कहती हूँ बस ब्लेस यू ही कहना है ना सबको, मतलब कहने की बात नहीं, लेकिन दिल से शुभ सोचो, तो ड्रामा अनुसार, कर्म अनुसार, हिसाब किताब अनुसार कोई ऐसी परिस्थिति आ भी रही है जो चैलेंजिंग है। मैं तो डिफिकल्ट किसी बात को नहीं कहती, ना इम्पॉसिबल कहती हूँ, पर चैलेंजिंग है। उन चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारा सोच शुद्ध और श्रेष्ठ रहे। पर उस टाइम जो बाबा ने कहा ना, जो ड्रामा में होगा वो मैं करूंगी, बोला नहीं, ऊंच पद पाने वाले ये नहीं कहते, ड्रामा में होगा तो मैं करूंगी। हालांकि मुझे पता है कि ड्रामा में, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकती वो पॉइंट एक है कि हाँ, अंदर में कभी चिंता लगे, टेंशन हो, तो उस समय जो कल पहले हुआ था वो होगा, रिलैक्स। लेकिन अटेम्प्ट तो करेंगे ना, एफर्ट तो करेंगे ना, पुरुषार्थ तो करेंगे। तो इसलिए मेरा तो ये पुरुषार्थ काफी महीने से अटेंशन इस बात पर रहता है, क्योंकि फिर भी हम सबको पता है कि घर जाने की तैयारी करनी है। और अभी तो मुरलियों में स्थापना का तो चल ही रहा है, बहुत बाबा कह रहा है, क्योंकि हम लोगों को कई बार भूल जाते हैं कि हम नई दुनिया बना रहे हैं, स्थापना के निमित्त हैं। शुरू में हम लोगों को बहुत, पर अब तो तैयारी किसकी करनी है कि क्या विनाश हो जाए, हो रहा है समझो, शुरू तो तैयार है हम। ऐसी परिस्थिति है, 12 वो जो क्लॉक वर्ल्ड क्लॉक दिखाते हैं, सिर्फ हमारी घड़ी चक्र नहीं है जो चित्र में है, लेकिन आपको मालूम है दुनिया का भी एक बहुत बड़ा क्लॉक दिखाते हैं। अभी 10 सेकंड दिखा रहे हैं 12 बजने में, वो मूव होता है धीरे धीरे, एक एक मिनट एक एक मिनट। अभी कल जयंती बहन बता रही थी कि अभी 10 सेकंड दिखा रहे हैं उसमें। तो मैं ये सोच रही थी कि आज अगर जो बाबा कहता है प्राकृतिक आपदाएं, उसका तो कोई आज भरोसा, कितनी फ्लड आए होंगे इंडिया में, कितनी गर्मी होती है, कितनी सब सारे वर्ल्ड में आज पूछा। लेकिन अभी जो खाने पीने वाले थे, आज सांप पक्षी वो लोग भी बदला लेने को तैयार होंगे। अभी सबसे ज्यादा किस बात का डर है? वायरस का, राइट? बाबा ने ये कहा था बच्चे ऐसी ऐसी बीमारी होंगी, किसकी दवा नहीं होगी। तो मैं सबको हंसी में कहती हूँ कि अभी एनिमल्स राइट्स का टाइम आ गया है, वो लोग बोलते हैं हमारा भी जीने का अधिकार है। प्रकृति ने तो कहा कि हमारा है ही, तो बहुत हंगामे होते हैं। अब रियली कितनी इतनी कैलेमिटीज होती है, उसमें जितना नुकसान होता है धन का, मनुष्य की लाइफ का, परंतु उसके साथ साथ आज जो है, पहले बर्ड्स का हुआ स्वान फ्लू और अभी ये नया चल रहा है। सारे हमको भी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर मैं होती तो मैं नहीं जाती, आपको जाना है बेशक जाओ, पर सारा दिन हाथ धोते रहना, ये करते रहना, ये करते रहना, ये करते रहना। सारे वर्ल्ड में एक डर फैला हुआ है। हम तो इंडिया में देखा, आए तो सभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने मास्क डाला हुआ था, व्हीलचेयर वाले ने मास्क डाला, पोर्टर ने मास्क डाला, एयर इंडिया में वहां चढ़े तो व्हीलचेयर प्लास्टिक की, पूरी प्लास्टिक की व्हीलचेयर बना दिए, क्योंकि पहुंचते रहते हैं वो हर पैसेंजर के पास, इतना डर मतलब है। तो कहने का मतलब, और फिर मनुष्य का अपना, आज सभी घबराए हुए, डर है, चिंता है, इनसिक्योरिटी इतनी है। तो ये सब एनर्जीज है ना, और ये जब रियली और बढ़ता जाएगा, जिसको बाबा विनाश कहते हैं, ऐसे ऐसे जो सारे नेताएं कहें, धर्म राजनीति, जिसमें सब राज्य के अंदर सच्चाई का तो नाम नहीं है, ऐसे समय पर जब विनाश होगा, क्या हम सब तैयार हैं? अचल है, अडोल है, एक रस है। अचल इमोशनली होता है, अटल फिजिकली होता है, और एक रस आध्यात्मिक होता है। ये तीनों शब्द क्या, मैं आज अपने मन से ही पूछ रही थी कि आज अगर ऐसी परिस्थिति है जहां आपको खाने को, रहने को, किसी बात की सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? आज तो सब बहुत कंफर्टेबल है, और बाबा कहते हैं बच्चे रहेंगे, दाल रोटी तो मिलेगी, और अभ्यास आप करते ही होंगे ना। मैं आज उनको ये कह रही थी कि ब्रह्म भोजन का भी कल्चर होना चाहिए, कोई कोई दिन इतना सिंपल ब्रह्म भोजन होना चाहिए। एक बार हमने वहां पर भोग में दाल रोटी बनाई, बाबा कहते हैं दाल रोटी तो मिलेगी, दाल बनाते हैं और नान की तरह मोटी मोटी अच्छी रोटी बनाई, सब लोग बहुत अच्छा लगा तो हमको, तो नए तरह का भोग था, हलवा तो हमेशा ही, मीठा तो बना ही, हमने फ्रूट सैलड बना देते, बहुत सारा फ्रूट्स काट करके मिक्स करके बढ़िया सैलड बना दो, वेजिटेबल सैलड बहुत सारा बना। कहने का मतलब ये कि अपने अंदर में रियली सच्चाई से पूछे कि स्थापना के कार्य में तो हमको याद स्मृति रहनी चाहिए, स्थापना चल रही है, पर विनाश होगा, होना शुरू हो जाएगा, और हम को उस समय भी सेवा करते रहना है अपनी स्थिति के द्वारा, या जो भी उस समय हमको साधना प्राप्त, साधन प्राप्त होंगे। मैं ऐसी में कई वही न्यूयॉर्क में कहती हूँ, कुछ नहीं हो ना तो बहुत सारे पॉपकॉर्न बना लेना, बहुत सारे तो अड़ोसी पड़ोसी सबको थोड़े थोड़े पॉपकॉर्न दे देना, वहां पर आप भी बनाते हैं, मैंने देखा यहाँ भंडारे में पॉपकॉर्न बहुत बनते हैं, सब पेट भी भर जाता है, अच्छा भी लगता है। तो कहने का भाव ये कि अंदर में चेक करते रहो, कल मैं कह रही थी सिर्फ चेक करके चेंज नहीं करो, पर थोड़ा आगे बढ़ो, सिर्फ चेंज से तो क्या होगा ना। तो इसलिए सबसे मुख्य पवित्रता, फिर है शांति, कम से कम कोई देखे एक हफ्ते में, एक दिन में मैं एक बार भी अपसेट नहीं हुई, जिसको बाबा ने कहा ना तनाव लगाव, तीन शब्द बीच में बाबा ने कहा प्रभाव, वो भी मेरे को बहुत अंडरलाइन हुए कि कभी कभी देखो गुस्सा नहीं आता है, थोड़ा अंदर में हलचल होती है, फिर उसका टेम्पर आता है, थोड़ा अपसेट होते हैं, फिर थोड़ा जोर से बोल देते हैं, तो रजिस्टर तो रिकॉर्ड तो खराब हुआ ना, चाहे किसी भी कारण से हुआ। तो इसलिए जैसे कि हम एक शांति का स्वरूप बनते जाएं, धैर्यता और शांति, फिर उसके बाद तो पवित्रता है, शांति है, फिर सुख है, आंतरिक सुख, अतीन्द्रिय सुख जब होता है तो रोम रोम हमारा, पता लगता है कि आज अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। और लास्ट फिर क्या है, समृद्धि, हर बात में सफलता भी साथ देगी और प्रॉस्पेरिटी। मैं सबको कहती हूँ कि वृद्धि हो रही है या समृद्धि भी हो रही है, तो इसलिए कल की ब्लेसिंग, संगठन में होते हुए भी अपना लक्ष्य लक्षण सामने रखो। मैं ये नहीं कि मुझे वो कर रहा है क्योंकि ये कर रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही है, ये तो यज्ञ में चल रहा है तो मैं भी करूं, हमने तो कभी नहीं, मुझे एक एग्जाम्पल रहना है, मुझे बाबा को फॉलो करना है, मुझे नहीं कोई कुछ भी करे, पर बाबा क्या करता था और क्या कहता है वो मुझे कर। लक्ष्य, संगठन में रहते लक्ष्य की बहुत जरूरत है, एक संगठन का लक्ष्य होता है, एक व्यक्तिगत लक्ष्य होता है, जिसका व्यक्तिगत लक्ष्य होता है ना वो अपना जो संगठन भी बनाता है उसका भी एक लक्ष्य बन जाता है, जिसको लोग भाई आपकी टीम कौन सी है, आपकी डिपार्टमेंट कौन सी है, तो अपना लक्ष्य है व्यक्तिगत, तो संगठन में भी हम वही चर्चा करते हैं, वही करते हैं, नहीं हमें ऐसा ही रहना है, यही करना है, ये बड़ी चैलेंजिंग धारणा को या वरदान है कि लक्ष्य फिर वैसे ही लक्ष्य। हम लोग तो दीदी मनमोहिनी और दादियों के पढ़े हुए हैं, तो वो हमेशा हमको ये कहते थे, जो बाबा कहता है ना बच्चे रॉयल, तुम तो रॉयल बच्चे हो ना, तो अपने लक्षण, अपना व्यवहार, अपना संबंध, अपना लेन देन सब में रॉयलिटी। और कोशिश करके किसी भी बात में, देखो पब्लिसिटी एक ऐसी सेवा का साधन है और यही माया का साधन भी है, चाहे मेरी पब्लिसिटी हो चाहे मैंने जो किया। अभी देखो बहुत कुछ होता है सेंटर्स पे होता है, कई चीजें ऐसी होती है कि वो परिवार के लिए अच्छी है, अगर आपने उसकी YouTube बनाई और आज हम वहां बैठे हैं और देख रहे हैं या और भी लोग देख रहे हैं, विश्व भी देख रहे हैं, तो कई बातें उचित नहीं लगती है कि क्या जरूरी है कि जनता ये सब देखे। तो दीदी और वो हमेशा ये कहते थे कि हर बात में बाबा ने जो हमको मर्यादाएं दी हैं, ब्रह्मा बाबा की यज्ञ की स्थापना, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से वो समझ लेके यज्ञ को चलाना, उस हमको फॉलो करना है, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, व्यवहार से भी, संबंध से भी, सब बाबा ने बताया। लौकिक है उनको अलौकिक संबंध हो, मैं मेरा से ऊपर रहूं, कितनी अगर आप एक एक शब्द की शिक्षा याद रखेंगे तो आप बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा को माइक आके प्रत्यक्ष करके बोल के जाएगा, पर हम में से एक एक बाबा को प्रत्यक्ष करता है ना। प्रत्यक्षता क्या है, बाबा ने जो कहा लोग मेरी जीवन से वो अनुभव कर सके। पहले मेरे पास करीब सेवा के लिए 42-45 देश है, बहुत दूर 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 दूर, तो मैं 30-40 साल के करीब जाती रही हर जगह हर जगह। अभी करीब 2 साल से मैंने कम कर दिया, तो स्काइप के द्वारा लाइव स्ट्रीम बहुत साधन अपनाए हैं। तो मैंने कहा देखो हमने कितने आपके पास लोग भेजे, वो भाषण वाली भेजी, मैंने ये भेजा, इसको भेजा, वो वर्कशॉप। बोला नहीं मोहिनी बहन, आप कहने में फर्क था। मैंने कहा क्या फर्क है। बोला आप जब आते हैं ना तो सभी लोग यज्ञ के नजदीक आ जाते हैं, वो लोग आते हैं वो सेवा करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा देखो हरेक को फिर भी क्या चाहिए कि हमारे द्वारा उनको यज्ञ की समीपता, बाबा की समीपता का अनुभव हो। तो फिर मुझे लगा कि बात तो ठीक है उनकी भी, क्योंकि बाबा ने जो हमें ब्रह्मा बाबा ने दिया, बाप दादा ने साकार में दिया, फिर अवैध बाप दादा ने इतना दिया है, और अब ऐसा समय है कि बाबा तीनों रूपों में है, निराकार भी है, आकार भी है, साकार भी है। तो लास्ट 2 मिनट जो कहा था, तो उन तीनों रूपों में अनुभव करने के लिए वो स्थिति चाहिए। अभी आत्मा परमात्मा का अनादि संबंध, अनादि स्वरूप से याद करो बाबा को, तो आत्मा को निराकार बाबा की उपस्थिति और प्यार का अनुभव होगा। देखो प्यार का अनुभव क्या है, लेकिन अगर मेरे को मेरी वो है ही नहीं बुद्धि ऐसी, तो अनुभव कैसे होगा। पर जितना मैं अपनी स्थिति निराकारी अनादि स्वरूप की बनाऊंगी, तो परमात्मा निराकार बाबा का, शिव बाबा का प्यार, शक्ति, साथ, हाथ जो कहो, वो अनुभव होता है। लेकिन हमारा देह अभी देहभान में ही हम लोग हैं, तो वो अनुभव की कैपेसिटी नहीं है ना। नहीं बाबा मैग्नेट और उसका एग्जांपल देते हैं कि फिर वो पुल नहीं है ना। तो इसलिए निराकारी स्थिति जिसमें फिर स्वच्छता भी हो, किसी के प्रति कोई मतभेद नहीं, कोई किसी के बारे में भी हमारे मन में कोई द्वेष नहीं, वैर नहीं, कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं। अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करना है। तो आज भी बात कर रहे थे कि जब हम यहाँ लास्ट टाइम आए तो अभी भी जब ऐसे देखते हैं, जैसे बाबा आते हैं, बाबा आते हैं, कोई ये नहीं कह सकता बाबा तो आते नहीं, हम क्यों जाए मधुबन। मैं पिछली बार रियली जाकर के सबको बहुत बड़ा ईमेल लिखा, मैंने कहा जब तक जा सकते हो, प्लेन चल रहे हैं, जाओ मधुबन सब। कोई एक भी ये नहीं कहे बाबा नहीं आता है, बाबा आता है। क्यों आते हैं 20,000 लोग, लेकिन सबको अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्थूल में पहले बाबा आते थे तब भी लोग सीट के लिए बहुत होता था, मैं आगे बैठू, मैं इधर बैठू, पीछे अभी बाबा जाता नहीं था, लोग कूद कूद के, हम लोग बैठे होते थे हमारे ऊपर ही आके आ जाते थे। आजकल वो नहीं होता है, लेकिन आप जहां भी होंगे, हमारे पास विदेशी आते हैं, इतना बाबा का अनुभव करते हैं अव्यक्त बाबा के मिलन का, बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, फिर मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, फिर बहुत अच्छा। और साकार का अनुभव भी यज्ञ से कर सकते हैं। अभी टोली खिलाना है, हम लोग आते, बाबा टोली खिलाते थे, 22-25-30 लोग होते थे, हम सोचते थे एक दिन बंद हो जाएगी, पर आज भी प्रबंध हो रहा है ना, किसकी शक्ति से हो रहा है, बनाने वाले बना रहे हैं, पर भावना क्या है, बाबा की टोली बाबा बना रहे हैं। तो साकार बाबा, किसी ने कहा बाबा की क्या पर्सनैलिटी, मैंने कहा यज्ञ बाबा की पर्सनैलिटी है। आत्माओं को मत देखो, संस्कारों को मत देखो, संबंध व्यवहार की बातों में नहीं जाओ, यज्ञ बाबा कैसे चला रहा है जो साक्षी होके देखो, तो आपको साकार बाबा का भी अनुभव होगा। बेशक शिव बाबा की श्रीमत है, पर उसने समझ के खुद समर्पित होके एक उदाहरण बन के यज्ञ के नियम मर्यादा सब बनाए। हमारी सेफ्टी लाइफ में श्रीमत पर चलने पड़े, नहीं तो कर्मों के हिसाब किताब में तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति सब व्यर्थ चली जाती है। किसी चक्कर में हम नहीं पढ़ सकते अगर पूरी तरह श्रीमत पर चलो, निर्मोही भी रहेंगे, निर्बंधन भी रहेंगे। और जैसे बाबा कहता है कि खुद अपने से संतुष्टि बहुत होगी, सर्व प्राप्तियों की तृप्ति, इसलिए पूछते हैं खुश राजी हो, तो सब कहते हैं खुश तो हैं, फिर पूछते हैं राजी हो, परसेंटेज। हम तो जिस दिन से बाबा, आज भी बहुत संतुष्ट है, सब देखो व्यवहार संबंध संस्कार ये तो खेल चलता रहेगा एंड तक। बेशक बाबा कह रहे हैं अभी संस्कार नहीं होना चाहिए, पर हमको बाबा भी ड्रामा देख रहे हैं, हम भी ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पार्ट बजाना है ने? तो इसलिए हम सभी मिल करके, हमारा ही घर है, हमारा ही परिवार है, हमारा ही यज्ञ है कि किसी और का यज्ञ है, किसका यज्ञ है? तो हम, मैं सबको ये कहती हूँ कि क्या हो रहा है ये मत देखो, पर मुझे क्या करना है वो संगठन बढ़ाओ, मुझे क्या करना है, हमको क्या करना है, रिप्लेसमेंट तो होगी ना गई। तो इसलिए ऐसी दृढ़ता, इतना शुभ, सभी को जो 25 साल से अंबिका बहन शुरू से है, कईयों को मैं जानती हूँ, और आप सभी को आपके सिल्वर जुबली के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी ये शुभ भावना कामना है। और मुझे अच्छा लगा जब मैंने पढ़े आपके 5 प्रोजेक्ट्स, किस किस बात में चल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो लेवल चल रहा है उस पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ के लिए। और पुरुषार्थ और सेवा अलग नहीं है। मैं तो सबको कह रही हूँ जो पुरुषार्थ कर रहा है, हम तो एक तरफ ऐसे जाके बैठ जाते हैं, शांत रहेंगे तो भी सेवा आती रहती है पीछे पीछे। तो सेवा और स्वयं तो सेपरेट नहीं है, चाहे कोई भी। और एक सेवा का प्लान होता है, एक ड्रामा निमित्त बना के करा रहे। पिछली बार हम एयरपोर्ट पर आए, कोई बहुत बड़ा वीआईपी था, वो न्यूयॉर्क से आ रहा था। कहता मुझे पता चला नवरात्रे चल रहे हैं, आप हमारे प्लेन में हैं, मैं कई बार आपसे मिलने के लिए आया पर आपसे नहीं मिल पाया। तो वहां उन्होंने वीआईपी लॉज में बैठे हुए थे, तो सबको बुलाया, मैनेजर को बुलाओ, एयर इंडिया के उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसे 20 वीआईपीज बुला लिए। मैंने कहा ये तो प्लान में नहीं था कि वीआईपीज आते ही बुला, ये नवरात्रि चल रहे हैं हमारे सामने चैतन्य देव भाई, सबको टोली ब्लेसिंग दो। जब आ रहे थे तो दिवाली के दिन थे, तो सारे जितने भी पोर्टर थे व्हील, वो सभी आ गए कि हमको वरदान दो, हमको ब्लेसिंग दो, हमको ये दो। तो साधारण भी थे, वीआईपी थे, इतनी सेवा, ये तो हमने प्लान ही नहीं किया था। और रियली बाबा कैसे कैसे निमित्त बना देंगे अगर हमारी स्थिति उस समय पर। तो दोनों तरह से, एक सेवा की प्लानिंग होती है, एक अच्छा निमित्त बन जाओ, फिर देखो बाबा कैसी वंडरफुल सेवा कराते रहते हैं, जिसकी संतुष्टि अपने प्रकार की है। हमने सोचा था क्या इंडिया में जाएंगे तो वीआईपीस का ये प्रोग्राम एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा, तो इसलिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं अपने प्रति सबके प्रति रखते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कुछ पुरुषार्थ की बातें शेयर करने के लिए चांस मिला। ओम शांति। अभी एक दो तीन मिनट बाबा को याद करते।
सभी हो दुखी और सबका
दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ से दीदी को शुक्रिया करेंगे कि अपने अनुभवों से हमारी झोली भर दी, और दीदी को रिक्वेस्ट है कि बार बार आए और इस मंच को सजाए। दीदी का थैंक यू।